Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और इनका जब यहां हम देख रहे हैं व्यवहार में कि ये स्त्री और ये पुरुष दो भिन्न भिन्न दिख रहा है व्यवहार में, तो ये दोनों भिन्न भिन्न देखने के लिए इसका बिंब भी स्त्री और पुरुष होना चाहिए कि नहीं? जैसे दर्पण के अंदर एक स्त्री और दूसरा पुरुष दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि दर्पण के बाहर स्त्री और पुरुष खड़े होना चाहिए। दर्पण के बाद एक स्त्री और एक पुरुष दोनों खड़े हों अलग अलग, तो दर्पण के अंदर भी स्त्री और पुरुष अलग अलग दिखेगा। और दर्पण के बाहर केवल पुरुष खड़ा हो और दर्पण के अंदर स्त्री और पुरुष दो दिखेंगे नहीं, दर्पण के बाद स्त्री खड़ी हो तो दर्पण के अंदर पुरुष और स्त्री दिखेंगी नहीं। ये सारा का सारा विश्व प्रपंच जब दर्पण के अंदर दिखाई पड़ने वाले दृश्य की तरह है, बिंब प्रतिबिंब की तरह है, तो ये प्रश्न हुआ कि बिंब क्या है? यहां अनेक के तरह दिख रहा है, तो क्या बिंब भी अनेक है? प्रतिबिंब अनेक की तरह दिख रहा है, तो क्या बिंब भी अनेक है? सामान्य नियम क्या बता रहा है? कि अनेक होना चाहिए। और भिन्न भिन्न रूप में दिख रहा है प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब मान रहे हैं एक प्रकार से। इस श्लोक के आधार पर आप भी प्रतिबिंब है, मैं भी प्रतिबिंब हूं, कुर्सी में बैठे हुए भी प्रतिबिंब है, जमीन में बैठे हुए भी प्रतिबिंब है। ये इस श्लोक का दृष्टांत, इस श्लोक के आधार पर यही सिद्ध कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रेमपुरी हॉल भी प्रतिबिंब है, आश्रम भी प्रतिबिंब है। तो प्रश्न आया कि बिंब क्या है? ये प्रेमपुरी आश्रम प्रतिबिंब है तो इसका बिंब क्या है? ये हॉल प्रतिबिंब है तो इसका बिंब क्या है? तो ये सब अनेक अनेक है कि एक ही है? तो एक तो इसका उत्तर एक तो यूं समझ लीजिए कि प्रतिबिंब अनेक होने में बिंब भी अनेक होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है, यह नियम बाधित भी होता है। बिंब एक होते हुए भी प्रतिबिंब अनेक होते हैं, हो सकते हैं। अब आप लोगों में से कोई हरिद्वार गया हो, पावन धाम करके एक सप्त सरोवर में मंदिर है, वहां सब शीशे शीशे का कमाल है, शीश महल है, शीशे शीशे का मिरर ही मिरर का वहां कमाल है। इतने मिरर लगे हुए हैं, ऐसे एंगल में मिरर लगे हुए हैं, आप एक जगह खड़े हो जाओगे तो आप ही को ही ये बोध होगा कि आप कम से कम 50 जगह दिखोगे, खुद 50 जगह दिखाई पड़ेंगे। आप पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा हुआ मिलेगा आपको, जबकि सामान्य नियम ऐसा नहीं है, है? सामान्य नियम ऐसा नहीं है, बिंब प्रतिबिंब का सामान्य नियम ऐसा नहीं है कि आप पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब ठीक विपरीत डायरेक्शन पश्चिम की तरफ मुख खड़ा किया हुआ प्रतीत होगा। और या थोड़ा सा हो करोगे तो आप पूर्व की तरफ खड़े हो तो वो दक्षिण की तरफ खड़ा हो जाएगा मुख उत्तर की तरफ। वो शीशा इस तरह मिलाकर रखा हुआ है कि आपको आश्चर्य लगेगा कि आप पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो तो वह भी पूर्व की तरफ ही मुख कर खड़ा हो जाएगा, ये कैसे संभव होगा? तो ये सब मिरर का खेल है, समझ रहे ना? क्योंकि ठीक आपके पीछे यदि मिरर लगा दिया जाए और आगे भी मिरर है, पीछे भी मिरर है, तो क्या करता है कि आपके मुंह को आगे का मिरर पीछे मुख करके खड़ा कराएगा और वो जो मिरर का जो प्रतिबिंब है उसको फिर पीछे के मिरर क्या करेगा, फिर आगे की तरफ मुंह खड़ा फिर वापस कर देगा वो, तो आपको लगेगा कि आपके तरफ भी वो भी खड़ा है। ये सब उपाधियों का खेल है। तो बिंब एक होने पर प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, यह दृष्टांत है। और एक रूप बिंब में अनेक रूपता प्रतिबिंब हो सकता है, ऐसे भी बहुत से दृष्टांत हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये कैसे महाराज? तो कहते हैं कि वेदांत में माया जो उपाधि है, अविद्या जो उपाधि है, माया कुछ भी कर सकती है, जैसे दर्पण उपाधि कुछ भी कर सकता है, पतले को मोटा कर सकता है कि नहीं? सामान्य नियम क्या है? पतला का प्रतिबिंब पतला ही होना चाहिए, मोटे का प्रतिबिंब मोटा ही होना चाहिए, लेकिन दर्पण कुछ भी करके दिखाता है, दिखाता है कि नहीं? पतले को मोटा करके दिखा देता है और मोटे को दुबला करके दिखा देता है। तब सामान्य नियम यह है कि पूर्व की तरफ मुख किए करके खड़े हुए व्यक्ति का पश्चिम की तरफ मुख होना चाहिए, दर्पण कुछ भी करके दिखा देगा। जिस तरह दर्पण कुछ भी कर सकता है, इसी तरह माया कुछ भी कर सकती है। तो माया बिना शरीर के बिंब को शरीर के रूप में दिखा सकती है, ये माया की अनिर्वचनीयता है। अघटित घटना पटी ऐसी माया, ये माया के बारे में परिभाषा शंकराचार्य ने कहा, अघटित घटना पटी ऐसी माया, हमको असंभव सा लगने वाली घटना को भी माया संभव करके दिखा देती है, संभव करके दिखाती है। और इसका मतलब ये नहीं करना, नहीं समझ लेना कि संभव कर देती है, करके दिखा देती है। संभव कर देने में और करके दिखा देने में बड़ा अंतर है वो, हाँ, संभव कर देना और करके दिखाना ये अलग चीज है। जैसे दुबले पतले व्यक्ति को मोटा कर देना ये अलग चीज है, मोटा करके दिखा देना ये अलग चीज है, है? और मोटे को पतला कर देना ये अलग चीज है, और पतला करके दिखा देना ये अलग चीज है। दर्पण मोटे को पतला दिखा तो सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। दर्पण पतले को मोटा तो कर देते हैं, दिखा तो सकते हैं, कर नहीं सकते। अन्यथा मोटे को दर्पण पतला कर देते तो बहुत आसान था, सभी मोटे एक दर्पण के आगे खड़े हो जाते, पतले हो जाते। लेकिन आज सबसे ज्यादा समस्या है, कहते महाराज ये शरीर कितने ही कर लो घट नहीं रहा है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्, अपने ही अंदर विद्यमान इस विश्व को मायया बहि उद्भुवम उद्भूतम इव पश्यन्, पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया दृष्टांत। मायया अपने अंदर विद्यमान इस विश्व प्रपंच को माया बाहर उद्भूत हुआ सा प्रतीत करा देता है, करा देती है, और बाहर हुए से देखता है वो व्यक्ति, देखने वाला अंदर के विश्व को बाहर की तरह देखता है, देखने वाला। दृष्टांत दिया, यथा निद्रया, जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है। यह दृष्टांत तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, दृष्टांत तो ठीक है, लेकिन दृष्टांत तो दिमाग में बैठता नहीं है। दृष्टांत तो ठीक बैठता है, दृष्टांत दिमाग में ठीक नहीं बैठ रहा है। दृष्टांत क्या है? स्वप्न। आप जिस समय स्वप्न देखते हो, वो स्वप्न के तमाम पदार्थ आपके ही अंदर हैं कि बाहर थे? स्वप्न का समुद्र कहां था? स्वप्न में दिखाई पड़ा हुआ समुद्र कहां था? है? आपसे बाहर था कि आपके अंदर था? बाहर था वो समुद्र, आपके अंदर था। स्वप्न में दिखाई पड़ता हुआ पहाड़ कहां था? आपके ही अंदर था कि आपके बाहर था वो पहाड़? ये नहीं समझ लेना कि बाहर जो दिखाई पड़ रहा हुआ पहाड़, जागृत में दिखाई पड़ा हुआ पहाड़ आपके अंदर था कि बाहर था? सभी लोग कहेंगे कि वो तो बाहर है, मेरे अंदर कहां है? अच्छा भाई, जागृत का पहाड़ तो आपके बाहर है, तो स्वप्न का पहाड़? स्वप्न का पहाड़ नहीं है तो फिर जागृत का पहाड़ कहां से आ गया? जैसे स्वप्न का पहाड़ है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर क्यों देखा? कैसे देखा? है ही नहीं और देखना, विरोधाभास है। बंदे का पुत्र है ही नहीं तो दिखाई पड़ता है? खरगोश का सिंह है ही नहीं तो दिखाई पड़ता है? स्वप्न में दिखाई पड़ता है कि नहीं? खरगोश का सिंह है ही नहीं, है ही नहीं तो कभी भी जागृत में खरगोश के सिंह का अनुभव नहीं किया, इसीलिए आप स्वप्न में भी खरगोश जब भी दिखेगा स्वप्न में, सिंह वाला दिखेगा कि बिना सिंह का दिखेगा? बोलिए, स्वप्न में खरगोश जब भी देखेगा दिखेगा, सासलो, सासला बोलते हैं ना गुजरात में, जब भी दिखेगा वो सिंह वाला होकर दिखेगा कि बिना सिंह का दिखेगा? यदि वो स्वप्न में दिखेगा तो भी बिना सिंह का ही दिखेगा, क्योंकि जागृत में बिना सिंह का दिखा था। और गधा यदि स्वप्न में दिखेगा तो सिंह वाला दिखेगा कि बिना सिंह का? है? स्वप्न में यदि गधा दिखाई पड़ा तो वो भी तो बिना सिंह का ही दिखेगा ना, क्योंकि गधे का जागृत में सिंह वाला देखा होता तब तो आप स्वप्न में भी सिंह वाला गधा देखते, है ना? क्योंकि जागृत में देखा नहीं है इसलिए स्वप्न में नहीं देखोगे। इसी तरह स्वप्न में है नहीं तो दिखता है, और दिखता है हुए भी आप कहते हो कि स्वप्न में नहीं है। वेदांत का कहना है कि जागृत में भी जो पहाड़ दिख रहा है वो है नहीं, है नहीं तो फिर कैसे दिखता है? जैसे स्वप्न में दिखा वैसे ये दिख रहा है। स्वप्न में समुद्र दिखाई पड़ा तो कहां दिखाई पड़ा? अंदर की बाहर? बोले है ही नहीं। तो स्वप्न का समुद्र जब है ही नहीं फिर भी दिखाई पड़ा तो फिर ये क्यों कहते हो कि जागृत का समुद्र है, क्यों कहते हो? बोले दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई तो स्वप्न का भी पड़ रहा था, स्वप्न का दिखाई पड़ रहा था, है नहीं कर रहे हो और जागृत का दिखाई पड़ता है तो है कहते हो। दिखाई पड़ता है इतने हेतु से उसको है कहना यह गलत है। बात समझ में आई कि नहीं? तो स्वप्न में ना होता हुआ समुद्र दिखाई पड़ा निद्रा दोष से, इसी तरह जागृत में ना होता हुआ समुद्र दिखाई पड़ा माया दोष से। इतनी समझना है वेदांत, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो वेदांत के आचार्यों ने जागृत और स्वप्न को एक ही माना है। अंतर क्या है? तो बोले हाँ, ये बड़ा एक इतना अंतर है कि स्वप्न स्वल्प समय का है, जागृत थोड़ा दीर्घ स्वप्न है। स्वप्न लघु स्वप्न है, जागृत दीर्घ स्वप्न है। ये थोड़ा लंबा चलने वाला स्वप्न है। जब तक जागृत में नहीं जागोगे, जब तक जागृत में नहीं जगोगे तब तक जागृत स्वप्न होता हुआ भी जागृत प्रतीत हो रहा है, और जिस समय जागृत में जग जाओगे उस समय ये जागृत जागृत होता हुआ भी स्वप्न सिद्ध हो जाएगा उस समय। ये जागृत होने पर भी स्वप्न सिद्ध हो जाएगा। तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या कर दी है, झूठ ही सत्य जय ही बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जाने ही जे जग जाई है राई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। तो ये तो इस समय तो हम सोए हुए हैं इसलिए स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए सोने का भी दो प्रकार से सोया जाता है, एक आंख बंद करके और दूसरा आंख खोल करके। रात को आप कैसे सोए? आंख बंद करके सोए। और अभी इस समय कैसे सो रहे हैं? आंख खोल करके सो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोह निशा सब सोह निहारा, तुलसीदास जी ने कहा। मोह रूपी निशा में ये सभी जीव सोए हुए हैं। मोह शब्द का अर्थ होता है मोह वैचित्य, धातु से मोह बनता है, चित्त की विभ्रांतिता, ये मोह है। ये जो मोह निशा थोड़ी लंबी चलती है, रात्रि की जो निशा है वो थोड़ा छोटा है, कम है, कम समय का है। ये मोह निशा थोड़ी लंबी चलती है। ये निशा कब टूटेगी? इसको तोड़ने के उपाय है जग जाना। आपको जगने का मतलब होता है कि स्वरूप की उपलब्धि, बोध, यथार्थ स्वरूप का बोध। अभी भी बोध तो है आपको, अपना बोध तो है, लेकिन अपना बोध होता हुआ भी, सामान्य अपना बोध होता हुआ भी विशेष अपना बोध नहीं है। सामान्य अंश में कभी भी भ्रांति नहीं होती है, एक ध्यान रख लेना। जब कभी भी किसी को भी भ्रांति होती है, भ्रम होता है, उसमें दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश और दूसरा विशेष अंश। सामान्य अंश में किसी को भी कभी भी भ्रांति भ्रम हो नहीं सकता, और भ्रांति और भ्रम जब भी होगा तो वह विशेष अंश में होगा। उदाहरण के रूप में कोई रज्जु सर्प जिसको भ्रम हुआ हुआ है, वह क्या कहता है? यह सर्प है, दो वाक्य बोल रहा है वो। जिसको भ्रांति है, भ्रम हुआ है, उसको क्या कहता है? यह सर्प है। तो वहां दो वाक्य बोल रहा है, एक तो यह ये शब्द बोल रहा है, दूसरा सर्प ये शब्द बोल रहा है। यह जो ज्ञान हो रहा है उसको, इदम का जो ज्ञान हो रहा है, यह पने का ज्ञान हो रहा है, उसमें भ्रांति नहीं है, क्योंकि ये सामान्य है, इदम ये सामान्य है, यह ये सामान्य है, यहां भ्रांति नहीं है। भ्रांति कहां है? इदम रज्जु की जगह इदम सर्प, तो विशेष में भ्रांति हुई, रज्जु की जगह सर्प की भ्रांति हुई। प्रमा ज्ञान के द्वारा जब सर्पवाद सर्प भ्रांति बाद होता है तो भी इदम का ज्ञान यथावत ही रहता है। ब्रह्म ज्ञान के समय में भी इदम का ज्ञान यथार्थ रहता है, प्रमा ज्ञान के समय में भी इदम का ज्ञान यथार्थ रहता है। भ्रांत हुआ हुआ व्यक्ति को भी यह सर्प है यह ज्ञान है, भ्रांत न हुए हुए व्यक्ति को यह रस्सी है यह ज्ञान है। तो भ्रांत व्यक्ति और अभ्रांत व्यक्ति दोनों को यह पने में तो कोई भ्रांति नहीं हो रही है, दोनों को यह यह इदम इदम तो यथार्थ ज्ञान है, लेकिन फर्क कहां है? सर्प और रज्जु में। जो भ्रांत है उसको रज्जु की जगह सर्प दिखेगा, और जो भ्रांत नहीं है उसको सर्प की जगह रज्जु रस्सी दिखेगी। लेकिन इदम ये सामान्य है, दोनों को इदम का ज्ञान होगा। इसी तरह अभी आपको मैं, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? मैं, इस मैंपना का अनुभव तो हो ही रहा है, इसके बारे में तो आपको कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है। मैं यहां हूं, मैं हूं, मैं हूं, इसके बारे में तो आपको कोई शंका है, मैं हूं कि नहीं, ये तो शंका नहीं है। लेकिन जो मैं हूं, ये जो सामान्य में है, आपको भ्रांति क्या हो रही है? मैं जीव हूं। आपको भ्रांति क्या हो रही है? मैं जीव हूं, मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं अमुक का पति हूं, मैं अमुक की पत्नी हूं, मैं अमुक व्यक्ति की मां हूं, मैं अमुक व्यक्ति का बाप हूं। मैं, ये सामान्य ज्ञान, आपको यथार्थ ज्ञान है। लेकिन इस मैं सामान्य में विशेष अंश में भ्रांति हो रही है, आपको असली भ्रांति के अवस्था में आप ये सब कह रहे हैं, और आपके मैं का विशेष अनुभव जब होगा, जैसे कि महापुरुषों को हुआ और महापुरुष लोग कहते हैं, मैं जीव हूं ये भ्रांति, मैं शिव हूं ये यथार्थ ज्ञान, मैं कर्ता हूं ये भ्रांति, मैं प्लस कर्ता, कर्ता अंश ये भ्रांति का है, मैं अकर्ता ये प्रमा ज्ञान यथार्थ ज्ञान, मैं पुण्यात्मा पापात्मा सुखी दुखी, ये सुखी दुखी ये भ्रांति, मैं यथार्थ ज्ञान। तो मैं को ज्ञान, मैं का ज्ञान तो आपको हमेशा ही होता है, भ्रांत अवस्था में भी मैं का ज्ञान यथार्थ है और भ्रांत अर्थ में भी मैं का ज्ञान यथार्थ है, लेकिन भ्रांत अर्थ में विशेष में आप कहेंगे कर्ता भोक्ता, और ज्ञान अवस्था में विशेष में आप कहेंगे अकर्ता अभोक्ता कूटस्थ। मैं कूटस्थ हूं ये, अकर्ता हूं कूटस्थ हूं ये विशेष ज्ञान। हालांकि मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये भी विशेष ज्ञान है, क्योंकि मैं के साथ आपने एक विशेष लगा दी ना, कर्ता भोक्तापना। मैं के साथ उन्होंने कूटस्थ लगा दी, मैं के साथ उन्होंने ब्रह्म लगा दिया, आपने मैं के साथ जीव लगा दी, मैं के साथ कर्ता लगा दी, मैं के साथ भोक्ता लगा दी, उन्होंने मैं के साथ ब्रह्म लगा दिया, मैं के साथ अकर्ता लगाया, मैं के साथ अभोक्ता लगाया। तो ये जो विशेष में फर्क आ गया, मैं में ज्ञानी के मैं में और अज्ञानी के मैंपना में फर्क नहीं आता। जैसे कि आपको कहना होगा तो मैं स्त्री हूं, आप कहोगे कि नहीं? और आप कहोगे तो क्या कहोगे? मैं पुरुष हूं। तो मैं तो दोनों जगह समान है कि नहीं? मैं न स्त्री है न पुरुष है, विशेष में स्त्री और पुरुष है, सामान्य में न स्त्रीता है न पुंता है, विशेष में स्त्रीता और पुरुषता है। आप कहोगे मैं स्त्री हूं, आप कहोगे मैं पुरुष हूं, तो विशेष में फर्क पड़ा, मैं दोनों जगह सामान्य एक है। इसी तरह विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया बहि उद्भूतम इव पश्यन् मायया आत्मनि पश्यन्। माया के द्वारा अपनी ही आत्मा में विद्यमान यह विश्व प्रपंच को माया के द्वारा बाहर की तरह देखता है, यथा निद्रया स्वप्न में अपने ही अंदर विद्यमान सारे स्वप्न प्रपंच को न तत्र रथा रथयोगा अथ पंथानम सृजते। न तत्र रथा रथ कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं, स्वप्न में वहां न सड़क है न रथ है, न रथ का योग है न घोड़े हैं, फिर भी स्वप्न में रथ, रथ का मार्ग, घोड़े, रथ सब कुछ वह सृजना करता है और देखता है। तो स्वप्न में दिखाई पड़े हुए सब के सब उस स्वप्न दृष्टा के अंदर ही हैं, फिर भी वह स्वप्न दोष के चलते वह स्वप्न अपने से बाहर की तरह देखता है। किसी को लगता है कि स्वप्न में दिखी हुई आग ये मेरे अंदर ही है, स्वप्न काल में तो नहीं लगता है, लगता है क्योंकि जब तक स्वप्न है तो अंदर होता हुआ भी बाहर की तरह वो आग है कि जबकि आपके ही अंदर है, वो आग स्वप्न का आग आपके ही अंदर है फिर भी आपको नहीं जलाती और आपके ही अंदर है, दिखाई पड़ता है बाहर की तरह। जैसे स्वप्न का दृष्टांत वैसे ये जागृत का, इस समय ये सारा प्रेमपुरी आश्रम, आप हम, ये कुर्सी टेबल, माइक लाउड स्पीकर, माला, सब के सब हमारे अंदर हैं, लेकिन दिख रहा है बाहर की तरह। किस कारण से? माया, वहां स्वप्न है यहां माया है। उस माया के निद्रा से, मोह के निद्रा से जिस समय आप जगते हैं, जैसे कि सुखदेव जी जग गए, शंकराचार्य जी जग गए, जड़ भरत जग गए, मीरासुर आदि जग गए, उनको बाहर दिखा ही नहीं, तो उनको क्या दिखा? सियाराम में सब जग जानी, क्या दिखा उनको फिर? तो वो जगे हुए हैं। तो उसी तरह हम जगेंगे तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब बाहर है। हाँ, जगने के बाद अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतने साल से हम बाहर देख रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है, और आगे क्या है कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।